सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अंजुम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
वालेकुम नजीब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अंजुम, वो हमने पहले भी ट्रेड पे कुछ बात की थी, पर मैं उस पे वो हमने बड़ी मखसूस बात की थी ट्रेड कॉरिडोर्स पे। तो मैं बार बार सोचा रहता हूँ, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे सबसे ज़रूरी चीज़ तो ट्रेड थी, तो ट्रेड रेजीम के बारे में मैं सीखने कुछ जानना चाहता हूँ। आप कुछ इस पर जानते हैं ट्रेड रेजीम के बारे में? आप इसके कोई इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं आपके इसके बारे में?
नदीम, मैं भी इस वक्त इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी खबरों में ये आया था कि पाकिस्तान ने नई ट्रेड पॉलिसी इख्तियार की है, तो इस पे हमें ज़रूर वो गौर करना चाहिए कि पहले क्या थी, अब नई पॉलिसी क्या है और इससे हमारी मुल्क की तरक्की में कितना फ़र्क पड़ सकता
ये
है।
मैंने भी पढ़ा है नई ट्रेड पॉलिसी के बारे में, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस पे बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं एक ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ट्रेड पॉलिसी एडवाइज़र भी था कुछ देर के लिए, तो पहली मीटिंग में गया तो उन्होंने मुझे ट्रेड पॉलिसी बनाने पर कहा कि जी एक मीटिंग हो रही है तो आप ट्रेड पॉलिसी पर बात सुने। मैं चला गया वहाँ और मैं हैरान था कि ट्रेड पॉलिसी कैसी बनती है, तो उस पर हम बात करेंगे क्योंकि मैं तो मुतमईन नहीं था। पर हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मंजूर अहमद। डॉक्टर मंजूर अहमद एक बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं, इनका ट्रेड पॉलिसी से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है पिछले मेरे ख्याल 30-40 सालों में। इनका बड़ा लंबा करियर है, ये पाकिस्तान में माशाल्लाह ट्रेड पॉलिसी के साथ मुंसलिक रहे हैं बहुत देर से। ये सिविल सर्वेंट भी थे, इनका बड़ा अच्छा करियर, बड़ा सक्सेसफुल करियर यहाँ सिविल सर्विस में था। उसके बाद ये पाकिस्तान के एम्बेसडर WTO में, जो कि बड़ी ऊंची पोजीशन होती है, वहाँ लग गए और 6 साल वहाँ काम किया 2002 से 8 तक। तो इनको WTO का एक एक कोना पता है, इनको WTO की जो सी है नॉलेज इनकी बहुत ज़्यादा है और ट्रेड पॉलिसी की नॉलेज, पाकिस्तान में काम करते रहे। फिर ये पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेरियस तरीक़ों से पोजीशन में एडवाइस करते रहे, FAO में भी काम करते रहे। ये माशाल्लाह आजकल भी वाबस्ता है एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके साथ भी वाबस्ता है। तो ट्रेड पॉलिसी के लिए मैंने कहा कि इनको चुने, ये एक ख़ास आदमी है जिनको पता है बहुत कुछ। तो अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब।
अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, अनताफ साहब।
अच्छा मंजूर साहब, ये प्लीज़ हमें बताएं, ये ट्रेड जो मुहिम है हमारा, जब मैं बच्चा था तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ भी नहीं मंगवा सकते थे। मुझे याद है कि मेरे माँ बाप लंडी कोतल जाते होते थे, कुछ चीज़ें वहाँ से स्मगल होके आती होती थी। ज़रा ट्रेड पॉलिसी का हमें थोड़ा सा बता दें, ट्रेड रजीम, ट्रेड पॉलिसी, ये क्या चीज़ें हैं?
ये ट्रेड का मतलब है कि यू नो हाउ यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज, कितने ओपन हैं आप। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि जब आप बच्चे थे तो कुछ नहीं मंगा सकते थे, तो वो एक ज़माना था यू नो 70s and 80s, जनरली समझा जाता था कि इम्पोर्ट्स आर बैड फॉर ए कंट्री, और कंट्रीज के पास वो फॉरन एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती थी, वो चाहते थे कि हम अपनी इंडस्ट्री डेवलप हो, इसलिए कुछ चीज़ अलाव नहीं करते थे। तो दिस वॉज नॉट ओनली पाकिस्तान, दिस वॉज ट्रू ऑफ इंडिया, चाइना, मोस्ट अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी कुछ 50-100 साल पहले, एंड इनफैक्ट स्पेशली आफ्टर इन द अर्लियर 20th century एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर, दे वर मोर इंटीग्रेटिंग, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में वही चीज़ चल रही थी। तो पाकिस्तान हालांकि डिस्पाइट वॉट यू से कि वो चीज़ें नहीं आ सकती थी, बट रिलेटिव टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज वो वॉज बेटर ऑफ।
अच्छा, पाकिस्तान फिर भी ज्यादा खुली थी, ज्यादा खुला था पाकिस्तान।
पाकिस्तान फिर भी ज्यादा खुला था, वो आई मीन कुछ परमिट वगैरह के अगेंस्ट आती थी चीजें, इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी, सब कुछ था, खुला था। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी अपने जितने साउथ एशियन कंट्रीज से, मलेशिया, कोरिया, जितने कंट्रीज से, इनसे बहुत बेहतर थी। और उनकी कंबाइंड जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की थोड़ी ऐसी थी, लेकिन उनसे ज्यादा थी।
अच्छा,
फिर हुआ ये कि 70s में हमने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया, बहुत सारी को, और नेशनलाइज जब किया तो वो इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत इनएफिशिएंट हो गई, और उन्होंने गवर्नमेंट से टैरिफ प्रोटेक्शन मांगनी शुरू की। एक दूसरा प्रॉब्लम ये हुई कि हमने पब्लिक सेक्टर में, जैसे हमारी स्टील मिल, हमने गवर्नमेंट के सेक्टर में उसको एस्टेब्लिश किया, अब वो शुरू से इनएफिशिएंट थी, और स्टील इज अ बेसिक रॉ मटेरियल, और उसके लिए उन्होंने پہلے 10%, 20%, 30%, 40%, وہ بڑھتے گئے, وہ کہتے جی ہمیں اور پروٹیکشن دیں, ہم وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری پھر سب انڈسٹریز اس کا فال بیک افیکٹ ہوا باقی انڈسٹریز پہ. تو اس طرح رہا کہ مطلب کہ وائل وی ور ریلیٹیولی اوپن اینڈ ڈوئنگ ویل, لیکن دوسرے کنٹریز تھے وہ ڈیولپنگ کنٹریز, وہ کلوز تھے, وہ اوپن ہوتے گئے, اور ہم جو ہے مور اور لیس بس کلوز ہی رہے, دنیا آگے بڑھ گئی.
تو منظور صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے یہ جو ارلی پالیسی بنائی ہوئی تھی جہاں سب کچھ بند تھا, جہاں ایز آئی سیڈ کہ ہم فریج بھی نہیں لے سکتے تھے, ٹی وی بھی نہیں لے سکتے تھے, ہم مطلب کچھ بھی چیز نہیں, ہر چیز ہم سوچ رہے تھے پاکستان میں بنے گی, کیا یہ پالیسی ہم نے ختم کر دی ہے؟ اور کر دیا تو کب ختم کیا؟
نہیں, یہ باقی لوگوں نے تو اس پالیسی کو ختم کر دیا ہے, کیونکہ اب وہ جو ہے سپلائی چینز ہو گئے, کمپوننٹس آتے ہیں, اسمبل ہوتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتے ہیں. پاکستان ابھی تک بہت ساری چیزوں میں, جس طرح ہماری آٹو پالیسی آئی کل پرسوں, یہ اسٹل ابھی ہم کہتے ہیں کہ لوکلائزڈ ہوں سارے پارٹس, ہم کار کے خود بنائیں, تو یہ پاکستان ابھی تک مینٹلی اس چیز سے نکلا نہیں ہے, ابھی تک ہم امپورٹ سبسٹیوشن میں. اب وہ یہ ہے کہ پہلے ایک زمانے میں ہم تھرو پرمٹس کرتے تھے, کس چیز کو الاؤ کرتے تھے یا آپ کو لائسنس دینا پڑتا تھا, وہ چیز ختم کر دی ہے, لیکن ہم نے ٹیرفس رکھے ہوئے ہیں کافی ہائی. اگر کسٹم ڈیوٹی ہماری لو بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی 17% امپورٹ پہ سیلس ٹیکس ہے, اس کے اوپر انکم ٹیکس ہے, تو اگر کوئی آپ کو لگے نا کہ 10% ڈیوٹی ہے صرف, تو وہ بھی 50% بن جاتی ہے.
ٹھیک,
انفیکٹ آپ اس چیز سے اندازہ لگا دیں کہ اگر ٹوٹل سے کسٹم ڈیوٹی سے پاکستان مطلب امپورٹ ریلیٹڈ ٹیکسز پاکستان کو 40% آف ریونیو امپورٹ ٹیکسز سے آتا ہے. باقی کسی کنٹری کا دیکھ لیں دنیا میں, میرا خیال ہے سیکنڈ ہائیسٹ کو افریقہ میں کنٹری ہے جس کا 25% کو امپورٹ ٹیکسز سے آتا ہے. تو ٹیکسز جو ہے نارملی ڈومیسٹک ایکٹیویٹی سے ریز کیے جاتے ہیں, لائک یو نو جنرل سیلس ٹیکس اور مے بی انکم ٹیکس اینڈ ادر تھنگس. تو پاکستان میں ابھی تک جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹس پہ, تو انٹرنیشنل ٹریڈ سے ہم بہت زیادہ ٹیکسز کٹھے کر رہے ہیں.
یار انجو مجھے ذرا بتائیں تھوڑی سی چیز, یہ منظور صاحب نے جو یہ ٹرم تھوڑی سی استعمال کی, میرا خیال ان کی وضاحت کر دے, یہ ٹیرف پروٹیکشن کیا چیز ہوتی ہے, اور پھر ایکسپورٹ پروموشن کیا ہوتا ہے, اور لائسنسنگ وغیرہ, یہ تو ذرا وضاحت تھوڑی سی جلدی سے کریے.
ٹیرف پروٹیکشن یہ کہ آپ جس طرح کار پاکستان میں ایٹ لیسٹ آپ اس کو 60% ڈیوٹی دیں گے, ایٹ لیسٹ منیمم جو لوئسٹ وہ ہے, اور اس کے اوپر پھر سیلس ٹیکس بھی انکم ٹیکس بھی کو 100% ڈیوٹی دیں گے تو وہ چیز منگا سکیں گے. تو یہ ایک قسم کا ٹیرف پروٹیکشن ہے. یو بلٹ
پروٹیکشن کا لفظ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, پروٹیکشن کیسے ہو گئی؟
یو آر پروٹیکٹنگ دا لوکل انڈسٹری, یو آر جسٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز منگوائیں تو اس کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ لوکل انڈسٹری اس کے نیچے چھپ جائے.
ٹھیک ہے جی, یہی ہے کہ امپورٹڈ چیز اتنی مہنگی ہو کہ وہ لوکل انڈسٹری اس کے پیچھے چھپ جائے. جی ہاں, یہی ہے.
دوسری چیز ایکسپورٹ پروموشن.
سوری, گو ہیڈ انجم. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈبلیو ٹی او کی ریگولیشنز کے تحت اب اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگ گئی ہیں کہ آپ کتنی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں, کسٹم ڈیوٹی یا ٹیرف؟
نہیں جی, وہ یہ تھوڑی مسکنسیپشن ہے پاکستان میں کہ ڈبلیو ٹی او کی اس طرح کی کوئی ریگولیشنز ہیں. انفیکٹ ڈبلیو ٹی او پہ کوئی ایک آدھ پورا سیشن کرنا پڑے گا اس میں ذرا, لیکن ویری بریفلی یہ ہے کہ ڈبلیو ٹی او ان جنرل فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ٹریڈ, اینڈ دے ٹرائی ٹو لوور دا ٹیرفز. جن کنٹریز میں یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز موسٹلی نیگوشیٹڈ ود ایچ ادر, اور انہوں نے ٹیرفز ایک دوسرے سے کم کروا دیے. پاکستان جیسا کنٹری ہمیشہ ڈیفینسو رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کسی بھی چیز پہ ٹیکس لے لیں, فار ایگزامپل پینسل پہ لے لیں, اگر ہمارا ہم نے اپنے پرپزز کے لیے ہمارے ٹیرف میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس پہ 25% ڈیوٹی ہے, تو ہم نے ڈبلیو ٹی او کا اپنی جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو 50% اور بڑھا کے کی ہوئی ہے, کہ ہم نے کہا جی ہمارا ٹیکس جو ہے پینسل پہ 75% ہے. اس کو کہتے ہیں باؤنڈ ٹیرف. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپ ٹو 75% انڈر ڈبلیو ٹی او رولس اس پہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارا روز ریگولیٹری ڈیوٹیز لگتی ہیں اور یہ لگتے ہیں, تو ہم نے وہ کوشن لیا ہوا ہے. موسٹ ڈیولپ کنٹریز اینڈ ادر فارورڈ لوکنگ ڈیولپنگ کنٹریز, انہوں نے WTO में कमिटमेंट की हुई है, जो उनका अप्लाइड रेट है जिस पे वो आज उनके टैरिफ में लिखा है वो ही उन्होंने बाउंड किया हुआ है। पाकिस्तान ने हर चीज में 50% 50 पॉइंट का मार्जिन दिया हुआ, और कुछ चीज़ों में जिस तरह ऑटोज में तो इन्होंने कहा जी कि हमारी मर्जी है कि हम 50 से भी जितना भी ज़्यादा कर दें ये हमें ये बाइंड नहीं करते। तो ये इस तरह है, WTO ने कुछ चीज़ें की थी वो जो हमारे कंट्री से ज़्यादा रिलेटेड थी कि टेक्सटाइल्स में पहले होता थे कि डेवलप कंट्रीज कोटाज डिटरमिन करते थे किस कंट्री ने कितना क्या एक्सपोर्ट करना है, वो कोटाज खत्म हो गए जी।
चलें जी मंजूर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, WTO पे सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ज़रा थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि लोगों को समझ आ जाए बात, क्योंकि ये ट्रेड पॉलिसी ट्रेड जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, इसलिए मैं जान के कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बात बताइए कि हमारी ये ट्रेड रेजीम एक चीज़ कहते हैं और एक ट्रेड पॉलिसी, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
रेजीम पॉलिसी तो यू नो इट डजंट रियली, यू कैन चेंज देम इंटरचेंजेबली, इट डजंट मैटर। पॉलिसी सिर्फ ये है कि वो अनाउंस करते हैं, पहले इट यूज्ड टू बी अनाउंस्ड इन एवरी सितंबर, बजट आता है जून में तो ये सितंबर में, और अब उन्होंने 3 ईयरली कर लिया कि इसको कहते हैं ट्रेड पॉलिसी, उसका कम लंबा सा नाम है ट्रेड पॉलिसी फॉर 3 ईयर्स। या
तो हमारी ट्रेड पॉलिसी अब 3 साल के लिए हर 3 साल के बाद बनती है, पहले हर साल बनती थी।
जी
अच्छा, मुझे छोटी सी बात बताएं कि ये ज़रा सा क्विकली समराइज कर दें हमारे लिए, अगर आपने किसी को समझाना हो बड़ी जल्दी में कि इस वक्त हमारी ट्रेड की सिचुएशन क्या है। दो चीज़ें, एक तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी चीज़ें आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट हैं उनकी क्या सिचुएशन है, नंबर दो हमारी इन चीज़ों के बारे में इस वक्त पॉलिसी या रेजीम क्या है।
इन जनरल तो हमारी कुछ वेरी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है इम्पोर्ट्स पे, जो चीज़ें बैन नहीं है वो फॉर अदर रीजन है, कुछ चीज़ एज सच बैन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल बैन है लेकिन वो रिलीजियस पर्पसेस अदर थिंग्स
ठीक
तो बैन नहीं है, लेकिन ये है कि हमने ड्यूटीज इतनी ज्यादा रखी हैं और उसके ऊपर सेल्स टैक्स और ये बाकी चीजें कि कुछ चीजों को काफी रिस्ट्रिक्ट कर लेती है, आई मीन यू नो दैट दे आर नॉट इट्स नॉट इकोनॉमिकल, उसकी वजह से चीजें तो आती हैं आपको सुपर मार्केट भरी हुई नजर,
बिल्कुल भरी है,
लेकिन वो कुछ लीगली नहीं आती, वो मोस्टली ये स्मगल्ड होती हैं। अब इनका कोई रिसेंटली कोई FBI ने एस्टिमेट लगाया कि ये 10-11 बिलियन का स्मगलिंग होती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि यू नो अगर इसका मतलब है कि आपका 30% ऑलमोस्ट आपके स्मगल हो जाते हैं, और ये स्मगलिंग अभी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज इन्होंने ये टैरिफ्स या इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा कर दिया। दूसरा हमारी ट्रेड पॉलिसी का एक ये एंगल है कि बाकी दुनिया ने हर एक कंट्री हर एक के साथ ट्रेड करता है, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो रिस्ट्रिक्शन रखता है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हम इसराइल के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी बात, तो अगर आप इफ यू वांट मी टू गो इन फर्दर डिटेल्स आई कैन डू दैट।
अच्छा ये बताइए कि इस वक्त अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमारा ट्रेड बैलेंस तो बहुत बड़ा है और वो डेफिसिट में है
जी,
ठीक है, इसकी क्या वजह?
देखें जब आपकी इम्पोर्ट्स ऑब्वियसली ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हो तो ट्रेड बैलेंस हमेशा डेफिसिट में होता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप दुनिया के कोई 100 कंट्रीज देख लेना तो मेजॉरिटी वुड हैव ट्रेड डेफिसिट। आपको देखे ना इस वक्त फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है या टर्की बहुत अच्छा जा रहा है, तो उनका देखें तो दे हैव ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, 125 बिलियन मेरा ख्याल है इसका इंडिया का है और उससे ज़्यादा टर्की का है। तो ये जब भी कोई यू नो एक्सेप्ट फॉर दोज कंट्रीज जिस तरह के ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो सरप्लस नजर आएंगे, या सब्सिक्वेंटली कुछ कंट्रीज लाइक चाइना जिन्होंने यू नो दे ओवर गॉट इट एंड नाउ दे एक्सपोर्ट्स, लेकिन जनरली डेवलपिंग कंट्रीज की नीड जिस तरह होती है कि मशीनरी इम्पोर्ट करना ये करना, और उसके साथ साथ होता क्या है कि बैलेंस किस तरह होता है कि वो FDI आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ रही होती है क्योंकि देयर मोर पीपल इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री। तो ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान में ये हेडलाइंस वगैरह में बहुत ज्यादा सीरियस, लेकिन बाकी कंट्रीज इसको इतना सीरियस
नहीं। बट ये देखिए हमारे यहाँ तो FDI नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो FDI बहुत कम है
ना, इसलिए कि आ ही नहीं सकती, आपके यहाँ कोई मशीनरी नहीं आ सकती, कोई आपके यहाँ जो यू नो आप अपने कोई भी रैंकिंग देखें कि डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान यू वन ऑफ द लोएस्ट, आप देखें कोई चीज कोई यहाँ FDI लगाएगा कि हमने चलो कोई चीज इंडस्ट्री लगानी है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, और आप अपने देखें कि आपका जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स आपका नंबर है दुनिया में 169 आउट ऑफ 189, दैट मीन्स अब देखो थोड़े से अफ्रीकन कंट्रीज जो जहाँ वॉर हो रही है वो है आपसे नीचे, मतलब इतना डिफिकल्ट है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पाकिस्तान से, नोबडी वुड लाइक टू इन्वेस्ट हियर।
अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये इस वक्त जरा नंबर्स थोड़ा सा कर लें कि जहाँ तक मुझे हिसाब है कुछ एक्सपोर्ट्स तकरीबन 26 बिलियन के करीब है, 27 बिलियन के करीब है, इम्पोर्ट्स तकरीबन 40-42 बिलियन के करीब है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बन जाता है तकरीबन 14-15 बिलियन का, ठीक है, वो जो डेफिसिट है वो तो कवर हो रहा है हमारी रेमिटेंसेस से।
जी
तो रेमिटेंस हमारी, अगर मैं ये कहूँ क्या मैं गलत हूँ कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो मैन पावर है,
ठीक है,
जिसका ट्रेड पॉलिसी से कोई ताल्लुक ही नहीं,
ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये कि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एडवाइज़र था तो मैं ये रोज़ सुनता था कि सारी मिनिस्ट्री तो ट्रेड प्रमोशन कर रही है,
ठीक है,
हैं, और सारी पॉलिसी का हमारा फोकस ट्रेड प्रमोशन पे होता है, ट्रेड सॉरी नहीं गलत एक्सपोर्ट प्रमोशन,
ठीक,
हमारी जुम्बिश सारी, हमारी काविश सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन की है,
ठीक।
पर अगर मुझे करेक्ट करने अगर मैं गलत हूँ कि पिछले 10 साल से हमारा एक्सपोर्ट GDP रेशियो तो वहीं का वहीं बैठा हुआ, चढ़ा ही नहीं,
ठीक है, चला ही नहीं, ना सिर्फ चला ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान ने अभी जो वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट फिगर थी कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन 1.45 एक्सपोर्ट मार्केट लूज कर और जो बाकी कंट्रीज लाइक वियतनाम इंडिया और ये बाकी कंट्रीज हमारा मार्केट शेयर दे रहे हैं, सो इनफैक्ट वी आर लूजिंग, नॉट दैट वी आर स्टैग्नेंट देयर, वी आर लूजिंग आवर एक्सपोर्ट शेयर।
तो मंजूर साहब फिर हमें ये बता दें जो पॉलिसी बनती है हर साल और अब हर 3 साल और ये माशाल्लाह इतना शोर मचता है और ये पैसे भी मांगते हैं, इस साल उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं, मेरा ख्याल कोई 20-30 बिलियन मांगे हैं, कितने मांगे हैं इस ट्रेड पॉलिसी के लिए?
नेक्स्ट नहीं याद लेकिन मेरा ख्याल थोड़ी कम है, मेरा ख्याल 7-8 बिलियन है,
7-8 बिलियन। तो जो 7-8 बिलियन रुपए खर्चेंगे और पिछले 10 सालों में अगर हम लूज सा हिसाब लगाएं तो तकरीबन उन्होंने ट्रेड पॉलिसी पे चले 20-30 बिलियन तो खर्च ही होंगे ना
जी,
तो इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा, तो ये क्या, प्लीज हमें एक्सप्लेन करें ये क्या चीज़ है?
पैसे मांगने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज इन्होंने पॉलिसीज बनानी है, पैसे मांगते हैं ये कहते हैं कि हमने सब्सिडीज देनी है।
अच्छा,
अब लास्ट टाइम भी आपको पता है आजकल अखबारों में रोज आता है कि वो जितना फ्रेट सब्सिडी दी थी वो ड्यूटी कंपनी बनी और अभी वो सब FIA और कोर्ट्स में चल रहे हैं केसेस, बिलियंस जितने लास्ट टाइम पिछले 2012-15 की जो पॉलिसी बनी थी और जिसमें जो सब्सिडी दी थी वो लोगों के घरों में चली गई। अच्छा, मोस्ट ऑफ इट। दूसरी बात ये होती है कि जब आप सब्सिडी देते हैं तो दो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है जहां जो डेस्टिनेशन होता है उनको राइट होता है कि वो एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा दें। अब EU ने हमें दिया हुआ है ये GSP+ और हमें ड्यूटी फ्री, लेकिन हमारा एक ही वहां पर ये वैल्यू एडेड चीज जाती है ये जैसे पानी की बोतल नहीं पेट्रोलिज्म कहते हैं।
अच्छा,
इस पे उन्होंने एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाई थी 5 साल से, अभी जाके हमने WTO में चैलेंज किया तो अभी आके उन्होंने हटाई है, तो वो जितना हमें कंसेशन दे रहे थे तकरीबन उतने ही वापस ले रहे थे।
Not bad.
तो ये सब्सिडी देना तो बिल्कुल और उसमें जाता सारा पैसा। एक्चुअली इनको करना ये चाहिए जब ये ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं तो जो एक्चुअल चीज है उसको तो ये एड्रेस ही नहीं करते। आप दुनिया में कहीं भी देख लें तो टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी ये इकट्ठी चलती हैं, कहीं देख लें साउथ अफ्रीका कहीं भी। तो यहाँ पाकिस्तान में चूंकि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत ओवरवेलमिंग रोल है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एंड उनकी दो चीज़ों पे होता है कि बस हम रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करें, दे डोंट लुक एट एक्सपोर्ट्स उसकी क्या हर्ट होती है, जितना एक कंट्री ओपन होता है चीज़ आती है उसको थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है वापस जाती है। अब दुनिया में ये व्हाट दे कॉल इट ग्लोबल वैल्यू चेंज और यू नो चीज आती है जाती है, हमारे यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इतने हाई ड्यूटीज दे के अगर पूछे गवर्नमेंट से तो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो ये स्कीम्स हैं DTRE कहते हैं उसको कि चीज आएगी और ड्यूटी
फ्री। DTRE क्या होता है जी?
एकदम से आपने पूछ लिया, इट्स मैं एक मिनट में ध्यान में आता है लेकिन what it means is कोई चीज़ बाहर से आएगी तो हम उसको ड्यूटी नहीं देंगे और हम उसको जब वो जाएगी तो अकाउंट फॉर करेंगे, मतलब कि इट्स अ टेम्पररी इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट दिस काइंड ऑफ स्कीम। सो इट्स तो है ये कि ज़्यादातर कंट्री में जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी 90% तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती हैं, तो ये दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बिकम इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, उन्होंने तो मार्केट से चीज लेनी है। ये बड़े बड़े दो चार बंदे जो होते हैं इंडस्ट्रीज वो ये स्कीम से फायदा ले सकते हैं, तो हमने ये एक किस्म का एक बायस बिल्ड किया हुआ है अगेंस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
पर एक इस तरह करिए जी, ये इसका मुझे मिल गया जी, ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात, यानी कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ड्यूटी और टैक्स माफ़ हो जाएगा, इस किस्म की चीज़ है, ठीक है ना जी। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए अब एक और, कि अगर कि अगर आपको डिस्क्राइब करना हो हमारी ट्रेड पॉलिसी, आप तो देखते रहे, आप जानते हैं हमारी ट्रेड पॉलिसी जब बनती है हर साल या इस 3 साल की बनी है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है? आफ्टर कुछ तो ये कहते होंगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या?
वो ये करते हैं कि एक तो हमेशा वो जनरल जैसी बातें करते हैं कि हम रीजनल हब बनेंगे, हम इन कंट्री, थोड़ा तो उनकी एक प्रायोरिटीज गलत होती हैं। फॉर एग्जांपल कहेंगे जी कि ये मैंगोज को एक्सपोर्ट करना है। अब मैंगोज हम 40 मिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं, अगर सपोज कर लें कि दुनिया में हमने उसकी मैंगोज को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो 400 मिलियन हो गए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ना पाकिस्तान का, जरा थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में क्या है और बाकी दुनिया का है। पाकिस्तान का ये आपने पहले फिगर बताई है जो 24-25 बिलियन की एक्सपोर्ट है। अब हमें किसी भी और कंट्री से कंपेयर करें, अभी देखें वियतनाम अभी हमारे साथ पहुंचा था, हमारी 5 बिलियन हुई तो वियतनाम कॉट अस देयर इन लेट 90s 5 बिलियन पे, अब उनकी कोई 150 बिलियन से ऊपर चली गई है। और हम वही 5 से 25। इस तरह बांग्लादेश यूज्ड टू बी हाफ ऑफ अस, तो अभी इस साल उनकी 30 बिलियन होगी और हम कुछ 23 बिलियन पे है। तो यू लुक एट एनी अदर कंट्री तो 100 बिलियन 120 130 150, इस तरह की बिलियन, इस तरह की।
नहीं तो बदूर साहब, ये बातें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को नहीं पता? वो भी तो माशाल्लाह बड़े दुनिया में सैरें करते हैं, और फिर आपके TDF भी हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में मैं आता हूँ, पर ये माशाल्लाह हमारे ऑफिशियल पूरी दुनिया में फिरते हैं, तो इनको ये बातें सब पता हैं, ये क्या सोचते हैं जब ये बैठ के पॉलिसी बनाते हैं?
एक तो जी मैंने पहले भी थोड़ा सा क्लियर किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कोई एक चीज़ भी ऐसी एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ उनके हाथ में नहीं है। सारा कुछ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में है और एंड अदर मिनिस्ट्रीज, यू नो, या कोई स्टेट, अगर कोई एक्सचेंज रेट है तो कोई और रिस्पॉन्सिबल है, कोई टैरिफ्स है तो कोई और रिस्पॉन्सिबल है, एवरीथिंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एज सच डज नॉट हैव एनी व्हाट शुड आई से, उसका कोई वो नहीं है, जोर नहीं है किसी ट्रेड पॉलिसी उस पर। तो वो उनका बस यही होता है कि दे जस्ट गो अराउंड एंड ओके, वो कहते हैं जी हम इस कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ें, लेकिन उनके हाथ में कुछ है नहीं है पॉलिसी मेकिंग उनके।
फिर मुझे एक बात बताइए, ट्रेड पॉलिसी बनती कैसे, इसका प्रोसेस क्या है?
प्रोसेस तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, सेक्शन ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी, दे सेंड आउट पेपर लेटर्स इन्विटेशंस टू वेरियस चैम्बर्स एंड अदर एसोसिएशंस, गेट देयर इनपुट और उसको इकट्ठा करते हैं, और फिर ये काफ़ी सीक्रेटिव जैसा प्रोसेस लगा रहता है। देन देयर इज द इंटर मिनिस्ट्रियल जिसमें कि बाकी मिनिस्ट्रियों वगैरह भी बैठे होते हैं, और होता ही है कि फिर वो खुद ही सीक्रेटिवली करते हैं, और एक दिन वो आके तो काफ़ी अच्छे कई हंड्रेड्स ऑफ पेजेस वो उनको दे देते हैं, कोई 1-2 घंटे देते हैं रीड करने के लिए, और फिर कहते हैं कि ये अप्रूव्ड होगी।
ये पेजेस लिखता कौन है?
लिखता मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स।
अपने आप लिखते हैं, कंसल्टेंट हायर करते हैं?
It depends, mostly अपने आप लिखते हैं,
क्योंकि मैंने देखा है बहुत मिनिस्ट्री में ये होता है कि वो डोनर आके एक पेपर दे देता है, ये साइन करके आगे कर देती है, क्या ये होता है?
नहीं है सच, मेरा ख्याल है कि ये ट्रेड पॉलिसी में या जिस तरह हमारी बजट मेकिंग में, इसमें बेशक कोई कंडीशनैलिटीज हो तो वो अलग बात है, दे ट्राई टू मीट इट, बट लिखते शिखते होते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चैम्बर्स वगैरह से मांगते हैं सजेशंस, उसमें तो वो लोग यही कहते होंगे हमें सब्सिडी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ये उसको इकट्ठा कर देते हैं या उसको एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं?
ये जो 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 चैम्बर्स कहते हैं हमें सर, तो कुछ एसोसिएशंस या कुछ ट्रेड बॉडीज आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन अदर्स, जिस तरह पाकिस्तान में है कि टेक्सटाइल एसोसिएशन, यू नो, एप्टिमा एंड दीज गाइज आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। सो अगर उन्होंने कहना है कि इस ये धागे पे ड्यूटी ज़्यादा कर दो, या फैब्रिक पे कर दो, या हमें ये रिबेट रेट जो है हमारा कम है, इसको जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इसका 3% से 6% कर दो, तो दे एंजॉय अनड्यू क्या कहते हैं प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट.
मतलब उनको तो टेबल पे बैठने की जगह मिल जाती है, गरीब आदमी या छोटा एसएमई वो तो टेबल पे बैठ ही नहीं सकता.
कुछ एक एक वो है, और दूसरी तरफ से जो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है ये ऑटो इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनका ये होता है कि कोई और हम दो या तीन जो तीन हैं मेन कंपनीज, एक तो कोई बाहर से कोई और इन्वेस्टर ना आ जाए पाकिस्तान में, और दूसरा ये है कि ड्यूटियां कारों पे कम ना हो जाएं, कि कंपटीशन ना करनी पड़े. और ये होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी कभार फोर्स हो जाती है कि ये बहुत गंद कर रहे हैं, तो वो सेकेंड हैंड कारें अलाउ कर देते हैं कि 3 साल पुराने, तो वो कोशिश करते हैं कि ये ऑटो इंडस्ट्री. सो देर आर सम इंडस्ट्रीज हु आर वेरी पावरफुल एंड दे गेट देयर वे ईयर आफ्टर ईयर.
पर मंजूर साहब, जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मैं तो ये रोता था और मैं बड़ा कहता था कि भाईजान जो ब्यूरोक्रेसी का काम है थोड़ी रिसर्च करना है. तो मैं इनसे पूछता था हमेशा, आपका क्या ख्याल है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं कहता था जी आप मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन बता दें, आप मुझे एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट्स का कोई थोड़ा सा एनालिसिस दे दें ताकि उसको हम ट्रेड पॉलिसी में डालें, आप मुझे थोड़ा सा एनालिसिस दे दें हमारे टैक्स और टैरिफ सिचुएशन का ताकि हम उसको डालें उसके अंदर, आप मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एनालिसिस दे दें ताकि मैं देखूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्रियल बेस क्या है, या इंडस्ट्री छोड़ दें बाकी भी पूरा इकोनॉमी का एनालिसिस थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा हमारी एक्सपोर्ट्स एनालिसिस होना चाहिए, वो कहाँ से आ रही है, उनकी कंपेटिटिव एडवांटेज क्या वगैरह वगैरह, क्या ये चीज़ें होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में?
नहीं, कॉमर्स में सच नहीं कुछ भी, बिकॉज ये जितने फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें ना, जिससे कि फॉर एग्जांपल टैक्स का असर पड़ता है, हमेशा कुछ अगर कॉमर्स सजेस्ट भी करती है कि फ्रांचाइज, तो वो FBR इमीडिएटली कैलकुलेट करता है जी अगर हमने ये ड्यूटी अगर इस तरह कर दी तो ये तो हमारा इतना लॉस हो गया. तो ये एन FBR एज एन ओवरवेलमिंग रोल.
देखिए जी, वो मैं सब मान जाता हूँ, ठीक है, मैं आपसे अग्री करता हूँ, एंड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल बड़ा अजीब है, और एक वो भी एक अपनी जगह आपकी बात बिल्कुल से दुरुस्त, और मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक सुपरा मिनिस्ट्री बनी हुई है, पूरे मुल्क पे हावी हुई हुई है, बट उसके साथ नेगोशिएट करने का तरीका एक होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी तो अपना कोई काम करके लेके जाए ना. अगर इन्होंने कोई इफेक्टिव प्रोटेक्शन का टेबल ही नहीं बनाया हुआ, यानी कि हमें पता चले प्रोटेक्शन कहाँ जा रही है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, अगर उनको टैरिफ टैक्स के सिचुएशन का कोई एनालिसिस ही नहीं कि वो लेके जाएं, तो फिर तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हावी रहेगी ना.
ठीक है, वो यूर राइट कि वो बेसिक ये भी फॉल्ट है, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक और इदारा है नेशनल टैरिफ कमीशन. हाँ, कि ये टैरिफ के एक्चुअल प्रोटेक्शन रेट क्या होना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन वो हालांकि है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, लेकिन वो भी आई थिंक मोर और लेस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उनको कोई खास पावर नहीं दी हुई. हालांकि एट वन टाइम IMF ने कहा था जब तक ये नहीं कहेंगे तो ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा देखने में आया नहीं.
अच्छा, ये बताइए कितने इदारे ट्रेड पॉलिसी के साथ मुंसलिक है? नहीं, आपने कहा एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, पर टैरिफ कमीशन है, और क्या क्या है?
नहीं नहीं, सब एक्चुअली हमारे यहाँ जो ट्रेड पॉलिसी है ना, बेसिकली अब चूंकि पुराने एक जमाने में होता था ना कि ये चीज को आने ये लिस्ट होती थी, नेगेटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट, टाइड लिस्ट, कि फलानी चीज को हम आने देंगे फलानी, अब वो तो खत्म हो गया ना, जैसे तो टैरिफ के थ्रू होता है, तो टैरिफ पॉलिसी डिटरमाइंड बाय FBR. तो बेसिक जो मैक्सिमम रोल है इसमें ट्रेड पॉलिसी में वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है.
अच्छा,
फिर दूसरे नंबर पे कॉमर्स का है, फिर इसके अलावा जो बाकी मिनिस्ट्री इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं लाइक इंडस्ट्रीज,
अच्छा,
वो भी इनपुट देते हैं, जिस तरह ये ऑटो पॉलिसी आई, दिस केम थ्रू, हालांकि पाकिस्तान का अजीब सिस्टम है कि वो बजाय इसके एक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाता, उन्होंने मिनिस्टर फॉर वाटर को दे दी कि आप ये ऑटो पॉलिसी बनाओ, और मिनिस्टर फॉर जो वाटर है ही वाज आस्क्ड वो कि आप वाटर पॉलिसी आपने लानी है, उनको वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, एंड ही वेंट ऑन टू मेक दिस वाटर पॉलिसी. वाटर पॉलिसी हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बस अब पोस्टपोन हो रही है कि उनके पास टाइम ही नहीं है.
मेरा ख्याल है वाटर कार भी उन्होंने ही बनाई होगी.
अच्छा, पर इसके अंदर दो और इंस्टीट्यूशन है मुझे तो याद है, एक TDAP है
जी,
ठीक है जी, और एक और है, एक माशाल्लाह आपके दुनिया में कमर्शियल काउंसलर्स फैले हुए, तो वो तो एक्सपोर्ट में मैं मेरा ख्याल बहुत बढ़ाते होंगे, हमारे अफसरान कमर्शियल काउंसलर्स बैठे हुए हैं कोई 80-90 कंट्रीज में कि नहीं?
हाँ बिल्कुल इस तरह
तो
है।
उनका क्या रोल है एक्सपोर्ट बढ़ाने में?
अच्छा, ये टीडैप और पिटार्ट का पॉलिसी मेकिंग में बहुत कम रोल है।
ठीक है, मान गया, पर
ऐसे
पॉलिसी छोड़ दे, रेजिम के साथ तो उनका ताल्लुक है ना।
और ये है कि ये राजस्थान जो आप मशकों से कहते हैं, तो सो दे वर ऑल इन पाकिस्तान, और इनके एक सेशन हुआ, स्ट्रेटजी सेशन, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी चाहिए। और एंड आई वाज आल्सो इनवाइटेड टू कम यू नो टू लुक एट इट एज एन ऑब्जर्वर। तो मैंने देखा वो डिस्कशन क्या, वही जिस तरह मैं मैंगोज की एग्जांपल दी ना, इस तरह की दो तीन इनसिग्निफिकेंट चीज़ें जो कि कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ना, वो इस तरह की कुछ चीज़ें अपनी अपनी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक वो कुछ कुछ उनका कोई रोल है नहीं है। ये हमने ये किया हुआ है, वाकई हमने कोई 50-60 कंट्रीज में भी है, आई थिंक सबसे दुनिया में, मेरा ख्याल है हमारे ही सबसे ज़्यादा होंगे ये पहले वो सारी दुनिया में।
लेकिन खर्चा माशाल्लाह काफ़ी हो जाता है, खर्चा तो काफ़ी हो जाता है इन पे।
खर्चा तो मेरे पास अब सामने फिगर नहीं है, लेकिन वेरी हाई। और दूसरी बात यह कि अनलाइक अदर कंट्रीज के कमर्शियल काउंसिल बैठा दिया, हमारा तो सिस्टम पाकिस्तान वाला चलता है ना कि उसके साथ एक असिस्टेंट होगा, एक स्टेनो होगा, उसको गाड़ी दी जाएगी, उसको सब दिया जाएगा। अब मैं न्यूयॉर्क में था तो वो कमर्शियल काउंसिल मुझे कहने लगे जी गाड़ी ले जाएं, तो कहने लगे कि यार मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने कहा यार यहाँ तो जो न्यूयॉर्क का मेयर भी जो है वो क्या डेली क्या नाम था उसका, हर जगह हमारी ये चीजें जो है ना, मच तनख्वाह नहीं देते हम, लेकिन ये गवर्नमेंट का पैसा हम ज्यादा जाया करते हैं,
माशाल्लाह जाया तो हो जाता है ना। और टीडैप क्या करती है जी?
टीडैप का तो यही होता है कि यू नो टू फैसिलिटेट एंड एग्जीबिशंस करनी है बाहर मुल्कों में, ताकि हम चीज़ों को प्रमोट करें, और ये ट्रेडर्स की कुछ शिकायत सुने, इस तरह की चीज़ें।
और पिटैक क्या करता है?
पिटैक का मतलब है कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। तो वो बेसिकली उसका है, उन्होंने साथ उसको लगाया हुआ है कि रिसर्च थिंक टैंक भी है, रिसर्च भी करेगा, लेकिन बेसिकली वो ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट।
किस किस्म की ट्रेनिंग करता है?
ट्रेनिंग लोगों को फेमिलाइज करना कि किस तरह ट्रेड बढ़ता है। वो जो जो कंट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं कि वो उनको यही बताते हैं कि किस तरह इसको
ट्रेड। वो तो स्टाफ कॉलेज में भी हो रहा है, नीपा में भी हो रहा है, हमारे पास बहुत इदारे हैं इस किस्म के।
नहीं, इदारे हैं, लेकिन स्टाफ कॉलेज नीपा वगैरह में ये चीज़ें नहीं होती, उनकी जनरलाइज ट्रेनिंग होती है और सारे सर्विसेज ग्रुप्स के लिए होती हैं कि आप जो है मैनेजमेंट बेसिकली।
इन इदारों की कभी कोई इवैल्यूएशन हुई है?
मुझे तो मेरे याद में तो नहीं है।
ठीक है ना जी, पीटेक हुआ अपना, ये क्या नाम है, TDAP हुआ, नेशनल टैरिफ कमीशन हुआ, यू नो, और के इनके, और मैं अगर इनकी एक छोटी सी वैल्यूएशन करूं, क्या आप मुझे कहेंगे गलत है कि हमारी एक्सपोर्ट GDP रेशियो अगर पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी बल्कि शायद गिरी रही है, तो क्या ये वैल्यूएशन काफ़ी नहीं है इनके लिए कि जी कमर्शियल काउंसलर्स वगैरह के, काफ़ी नहीं है कि अब इस सारे अपरेटस को हम कहें कि भाई खुदा हाफिज़?
हाँ, किया जा सकता है। इनने एक्चुअली कमर्शियल काउंसिल वगैरह रखे हुए कंट्रीज में कि अगर वहाँ पर कोई आदमी पाकिस्तान से कोई चीज़ इम्पोर्ट करना चाहता है या कुछ वहाँ पर कोई ये यू नो ट्रेड शोज वगैरह लगते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाए, वो आई थिंक वो उससे ज़्यादा उनका उनका सच रोल नहीं।
तो मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ कि 4-5 इदारे हैं जो रखे हुए हैं हमने इसलिए, जिनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी तनख्वाह है। लास्ट टाइम इनफैक्ट TDAP मेरे ख्याल कोई 10 साल पहले उसका बजट 2 बिलियन से ऊपर चला गया था। तो ये जो इदारे हैं अगर इनका कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा और कोई इवेल्यूशन भी नहीं होती, तो मतलब इनका फ़ायदा क्या है? नेशनल टैरिफ कमीशन फॉर एग्जांपल, उनको मैंने पूछा कि जी आप हमें इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट्स कैलकुलेट कर दें, वो कर ही नहीं सके।
नेशनल टैरिफ कमीशन का बेसिकली जो उन्होंने रोल लिया हुआ ना कि अगर कोई कोई शख्स ये कहता है कि जी हम ये पोर्ट स्टील इम्पोर्ट करते हैं और वो नहीं, पाकिस्तान में स्टील इम्पोर्ट होता है, इट्स लोअर देन द कॉस्ट व्हाट द प्रोडक्शन कॉस्ट, और उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, या फलाना कंट्री फलानी चीज़ को सब्सिडाइज करके ये भेज रहा है, या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एकदम आने लग गई है और हमारी इंडस्ट्री हर्ट होगी, तो इस तरह की चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा टाइम उसी पे करते हैं। आई थिंक 90% ऑफ द
वो तो प्रॉब्लम ऑफ बिग बिजनेस हो गए ना, बिग बिजनेस अपने लॉयर्स हायर करके भी कर सकती है। तो क्या मैं ये सही कहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि ये नेशनल टैरिफ कमीशन जो है ये एक बिग बिजनेस के लिए सब्सिडी है?
In some ways you can say that, yes, you can say this, कि उनको उनके because they can fight their case, so, लेकिन दोनों sides होती हैं उस पर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें ड्यूटी लगा दो, and then there are other जिनका इंटरेस्ट होता है कि ड्यूटी ना लगे।
बिल्कुल सही, ठीक,
बोथ साइड्स।
बट जहाँ तक मैं अब बात समझाऊँ मंदूर साहब, लेट्स सी, अगर आप मुझे करेक्ट करें, आपने जो बातें समझाई हैं बड़ी अच्छी बातें, लेट मी अंडरस्टैंड दम। नंबर एक तो आप कह रहे हैं कि हमारा पॉलिसी प्रोसेस तो है ही नहीं तकरीबन, वो बस रिपोर्ट बन जाती है बट कोई रिसर्च नहीं होती। मेरे नज़रिए में पॉलिसी रिसर्च के बगैर बनाना तो एक मतलब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और नंबर दो के वो सिर्फ एक कंसल्टेशन होती है बिग बिजनेसमैन से, उनके डिमांड्स आ जाते हैं बीच में। नंबर तीन के हम पैसे लगा देते हैं जो सब्सिडी का, जो सब्सिडी बिल्कुल यूज़लेस है। नंबर चार आपने कहा है कि जो सारा एपरेटस जो इंस्टीट्यूशन बनी हुई है ट्रेड पॉलिसी के लिए, ये मतलब इनका अगर मैं यूफेमिज्म यूज़ करूँ तो इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ज़्यादा, इनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, इनको हमें देखना चाहिए कि इनका फ़ायदा क्या है। अब जो सबसे मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, आपने बार बार टैरिफ्स की बात की और आप कह रहे हैं टैरिफ का एक्सपोर्ट के साथ ताल्लुक है, इसकी ज़रा वजाहत करें। और इसके साथ साथ मुझे एक छोटी सी भी चीज़ याद आती है कि हमने पीछे 4-5 महीने पहले एक मिनी बजट पास किया, उस मिनी बजट में हमने लग्जरी गुड्स का एक नई तश्कील दी और लग्जरी गुड्स पे एक नया टैरिफ लगा दिया। उससे पहले हमने 2008 में हमने एक नया टैरिफ सरचार्ज लगा दिया। उसके बाद जब मैं भी वहाँ था तो मेरे सामने मेरी ऑब्जेक्शन के बावजूद एक और सरचार्ज लग गया। तो जो मैं रिसीव्ड विजडम है, जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जी टैरिफ रिजीम बड़ी सिंपल होनी चाहिए, बहुत से बेस्ट तो ये है एक ही टैरिफ हो, अगर एक नहीं तो चले 2-3 टैरिफ लाइंस हो जाए कि पता हो लोगों को क्या है। हमारे यहाँ कितनी टैरिफ लाइंस हैं, कितने टैरिफ्स हैं और इस पे क्या कंफ्यूजन है, या कि हमारी रिजीम अच्छी है टैरिफ रिजीम?
नहीं, हमारी टैरिफ रिजीम तो वन ऑफ द पुअरेस्ट मेरा ख्याल है कि दुनिया में।
ओह माय गॉड, पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड।
अभी आप हमारा वो गए थे इसके लिए WTO में एक रिव्यू होता है, एवरी एक पीयर रिव्यू होता है ऑफ अदर कंट्रीज दीज पॉलिसीज, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज। तो कुछ कंट्रीज का तो है जो द बिगेस्ट इकोनॉमीज एवरी 2 ईयर, देन द नेक्स्ट 16 कंट्रीज एवरी 4 ईयर, तो पाकिस्तान जैसा जिनका बहुत लो ट्रेड शेयर है दुनिया में, तो उनका एवरी 6 ईयर्स। तो हमारा ट्रेड रिव्यू हुआ था अभी 2015 में, लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये जो टैरिफ पॉलिसी है ना, इस पर ये बहुत इनएफिशिएंट है और इससे बहुत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब जो आपने कहा ना रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं लक्ज़री गुड्स वगैरह के, कि वो लक्ज़री गुड्स का नाम लगाते हैं, उसको आप पूरा SRO जब पढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर तो 2-4 लक्ज़री गुड्स लिख देते हैं, उसके बाद नीचे उसमें स्टील भी होगा, उसमें हर तरह की चीज़ें होंगी, कि उसमें वो नीचे नाम ऊपर ये होगा कि हमने डॉग फूड पर लगा दिया, कैट फूड पर लगा दिया, चॉकलेट्स पर लगा दिया, लेकिन देर विल बी हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स और वो जनरल चीज़ों पे वो ड्यूटी लगा देते हैं। और अब मैं आई वर्क इन, मैं FBR में काफ़ी साल काम किया और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अगर हम जब कभी किसी ड्यूटी रेट जो ओवरऑल टैक्स रेट अगर 20% से ऊपर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्मगलिंग में चला जाता है, वो कुछ ना कुछ करके लाते हैं, वो फिर ड्यूटी से नहीं आता, उधर से नॉर्मल तरीके से नहीं आता। तो ये ड्यूटी इतनी ज़्यादा हाई करके अपने आप को धोखा देने की बात है। अच्छा, मैंने कुछ थोड़ा जैसा एनालिसिस किया अपने जैसे कंट्रीज़ और जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ, और अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान के हर सेक्टर में हाइस्ट ड्यूटीज है। मैं अभी बताऊँगी, मुझे रिसेंटली प्रिंटिंग इंडस्ट्री वालों ने मुझे फ़ोन किया, कहते सर ये हमारा केस देखें कि हम अगर पेपर और इंक और ये चीज़ें मंगाते हैं तो हमारे ऊपर को 50% ड्यूटी पड़ती है, अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और ये दूसरे बाहर से जाके प्रिंट करवा के लाते हैं बुक्स और ब्रोशर, तो चूंकि हमने वो साइन किया हुआ है इंटरनेशनल यूनेस्को का कि बुक्स पे ड्यूटी नहीं होगी, तो वो उनको जीरो पड़ती है। तो कहते हैं हमने बाहर के प्रिंटर्स को, वी हैव गिवन देम ए 50% एज कि ये पाकिस्तान में लाएं, पाकिस्तान बाहर से जाके प्रिंटिंग करा के लाए। तो ये हर इंडस्ट्री का हमारा ये हाल है। तो दूसरी ये है कि हम अपने अगर ग्लोबलाइजेशन ये जो है ना कि हम कितने किसी बाकी इंटीग्रेटेड हैं, तो अब देखें कि हमारी जो रैंकिंग है ना वन ऑफ द लोएस्ट है और हर साल जो है वो खराब। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले इसको देखा कि पहले ये वॉल स्ट्रीट जर्नल हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स वो ग्लोबलाइजेशन डिटरमिन करते हैं, तो पाकिस्तान में देखा कि कुछ साल पहले 117 था, अब 128 हो गया आउट ऑफ 178 कंट्रीज, और कियाना मोरिटेनिया जैसे कंट्रीज से नीचे है। इस तरह वो स्विस एक है कॉफ इंडेक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वहां पर भी हम सेनेगल नाइजेरिया वगैरह से नीचे 104। तो ये है कि वी आर अभी को वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स आए हुए थे तो वो इस्लामाबाद में एक ट्रेड पॉलिसी पे बिगेस्ट एक्सपर्ट, और मैं देखा कि गवर्नमेंट का कोई बंदा ही नहीं है, सारे डोनर्स बैठे हुए हैं उधर भी, और बाहर के लोग या कोई यूनिवर्सिटी के लोग या कोई इस तरह के बाहर के लोग बैठे हुए हैं, ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कोई आदमी है, ना FPR का। दे केम ओनली फॉर द ओपनिंग, और मे बी दे अगर उसको चेयरमैन को या सेक्रेटरी को बुलाया तो उसने अपने कमेंट्स किए एंड देन ही वॉकड आउट। तो वो लोग जो कह रहे थे कि आप जो हैं आप एशिया के साथ भी आपका वर्ल्ड एवरेज से आपके ट्वाइस हैं आपके ये टैरिफ्स, और साउथ एशिया वगैरह के बारे में आप बाकी कंट्रीज के ईस्ट एशिया के बारे में आप थ्री टाइम।
तो सब जब ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं तो इन चीज़ों पे कोई मेंशन नहीं होता है, इसका कोई गौर नहीं होता कि हम फलाने इंडेक्स में इधर नीचे हैं, हम फलाने इंडेक्स में नीचे हैं, और हमारा दुनिया ये कह रही है हमारे टैरिफ्स बहुत ऊंचे, इस पर कोई गौर नहीं होता,
इस पर अनफॉर्चुनेटली कोई गौर नहीं होता।
माशाल्लाह। अब ये बताइए कि हमने 2002 में बड़ी कोशिश करके एक रिफॉर्म किया था, और मुझे जहाँ तक याद है हमारे चार टैरिफ लाइंस हो गई थी, यानी कि लोएस्ट फूड वगैरह पे बहुत कम टैरिफ था, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं कपड़ों शपड़ों थोड़ा ज़्यादा टैरिफ था, और हमारा उससे ऊपर जो था वो टैरिफ एक और गाड़ियों का सबसे ऊपर था। और अगर देखा जाए तो उस वक्त मेरा ख्याल हमारे एवरेज टैरिफ कोई कितना 10 या 12% आ गया था, कितना हो गया था,
ठीक
है। तो अब क्या सिचुएशन है?
देखिए जी, एक तो ये हुआ कि 2002 वो एक प्रोसेस था, 97 में एक्चुअली शुरू हुआ था, बीच में वो जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ 98-99 में स्टॉप हो गया था, फिर द न्यू गवर्नमेंट केम तो उधर को इंटेंसिफाई हुआ, और बेसिकली उनके IMF के उस वक्त भी हमने एक साइन किया था, तो उस करने पे हमने उसको, तो यू आर राइट कि इन जनरल हमारे 5 टैरिफ स्लैब्स हो गई थी कि 0, 5, 10, 20, 25 ये होगी। देयर वर सम एक्सेप्शंस, जिस तरह की ऑटो लॉबी है इनको तो कंट्रोल कर नहीं सकता, इन्होंने कहा जी हम इस स्लैब में आएंगे, इस तरह की कोई एक्सेप्शंस थी, लेकिन इन जनरल ये 5 थी। एक तो उसके बाद 2002 के बाद आज 2016 हो गया, इस पर कोई रिफॉर्म नहीं हुई व्हाटसोएवर, पहली बात ये। अच्छा, तो दूसरी बात यह कि ये एक रिफॉर्म इन जरूर अब पिछले 2-3 सालों से जो श्योर हो रहा है कि SROs को हम कम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी उस एक्सरसाइज को बड़ी पुअरली कंडक्ट कर रहे हैं कि अगर
SROs पे आते हैं, पहले ये हमें कंप्लीट कर दें कि इस वक्त हमारे जो 5 है लाइंस कितनी लाइंस है।
नहीं, लाइंस तो अभी जो टैरिफ स्लैब्स है ना, गवर्नमेंट क्लेम करेगी 7 है, इफ यू एक्चुअली काउंट यू जस्ट ओपन द टैरिफ बुक यू विल फाइंड अबाउट 17। उसमें ये होता है कि आपका जो कस्टम्स का इंपोर्ट पे जो अप्रेजर बैठा होता है वो उसकी बदली वो कहता है जी अगर मैं फलानी जगह इसको क्लासीफाई कर दूं तो इस पर 30% ड्यूटी होगी, और इस जगह करूं तो 10%, तो चलो आप उसमें कुछ शेयर कर लेते हैं। तो इससे हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया।
तो जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतनी रिश्वत बढ़ेगी, उतनी करप्शन बढ़ेगी, ठीक है ना जी।
अब दुनिया में जो जनरल सेस टैक्स है उसमें 1 या 2% होती है, कोई किसी कंट्री में 12% है, किसी में 7 है, 1-2 होती है मैक्सिमम। पाकिस्तान में कोई 7 या 8 सेल्स टैक्स की भी रेट्स हैं, और FPR द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद विद सच।
मतलब FPR को तो ये इंसेंटिव है कि वो और बढ़ाते जाएं ताकि और करप्शन हो।
आई डोंट थिंक कि इस तरह ओपनली कि करप्शन ज्यादा हो या पॉलिसी मेकर ये सोचते हो, लेकिन बस समाओ
देखे ना, जब हम बात करते हैं एकेडेमिक्स तो हम तो बात करते हैं एक ओवरऑल ऊपर से पिक्चर देखने की। मैं ये नहीं कहता कि कोई सोची समझी चीज, बट इफेक्ट तो इवेंचुअली यही होता है ना कि अगर आप 4 बजाय टैरिफ रखने के कि जी मुझे पता है कि मैं अगर खाना ला रहा हूं तो खाना एक ही जगह आएगा, 10 जगह नहीं आएगा, मुझे पता है कि अगर मैं सीढ़ी ला रहा हूं तो सीढ़ी एक ही जगह आएगी, अगर मैं तो मतलब एक क्लैरिटी होती है कि मैं ये करूंगा ये। फॉर एग्जांपल दुनिया में होता है कि रॉ मटेरियल पे एक लगा ले, इंटरमीडिएट गुड्स पे लगा ले, फाइन, बट यू नो, और वो थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं. अगर आपने इतना मेस बचा दिया सतारा है और बहुत सारे गैप्स है, तो फिर तो ऑब्वियसली करप्शन का निज़ाम तो बढ़ता ही है, ये तो रिसर्च शो करती है.
छोटा सा एनेक्डोट बताओ. आई यूज टू वर्क इन ब्रसेल्स, हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है. तो अगर कंट्रीज में कोई झगड़ा होता है ना कि ये टैरिफ उस लाइन में होता है कि उस लाइन में फॉल होता है, तो कंट्री से वो कई दफा रेफर होते थे दीज इश्यूज टू ब्रसेल्स, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का. तो पाकिस्तान जब मैं वहां था, तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट्स होते थे, पाकिस्तान नंबर वन आता था हर साल, ये सबसे ज्यादा झगड़े पाकिस्तान से. फिर वो रिफॉर्म्स हुई 97, जब ये सारे करके ना सिर्फ चार कर दिए, और देन आई फॉलोड कि 2002 के बाद फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स हमारा जो है ना जीरो, हम एक भी डिस्प्यूट नहीं बार बेचते थे, क्योंकि डिस्प्यूट होता ही नहीं था, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के लिए कोई नहीं जगह था. अब वो तीन या चार ही वो क्लियर कैटेगरीज थी, और दिस थिंग. एंड ऑल्सो उसकी वजह से हमारे पहले जो मैंने उस वक्त वर्ल्ड बैंक से पता किया, तो वो कहने लगे जी पहले कुछ 97 में वगैरह में आपके कुछ $2 बिलियन की स्मगलिंग थी. जब ये रिफॉर्म्स हुई बाय द एंड ऑफ 2002 और ये 2003 वगैरह में, तो उनकी फिगर थी कि अभी आपकी जो है सिर्फ 500 मिलियन की रह गई है स्मगलिंग. अब देखें, अब FBI कहता है कि 11 बिलियन की होगी.
यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपने पिक्चर खींची, बड़ी मजेदार है. आप कह रहे हैं कि हमारी जब रिजीम सिंप्लीफाई हो गई, जब हमने टैरिफ्स कम कर दिए और उनकी लाइंस भी कम कर दी, मतलब इन सेंस के गुड्स की क्लासिफिकेशन ऐसी कर दी कि सब सिंपल हो गया, तो हमारी डिस्प्यूट्स भी कम हो गए, हमारी स्मगलिंग भी कम हो गई, ठीक है. और जबकि हमने ये रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के, लग्जरी गुड लगा के, हमने बढ़ा दी, कन्फ्यूजन बढ़ा दी, और जगह जगह क्लासिफिकेशन शुरू हो गई, लोगों ने अपनी गुड्स मिली भगत करके क्लासिफाई करवानी शुरू कर दी, तो आपकी स्मगलिंग भी बढ़ गई.
जी जी,
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, समझने वाली बात है.
दूसरा वो तो पोर्ट से आना ही बंद हो गया ना, कहीं ना कहीं और तरीके से आ रहा है.
बिल्कुल
सही. देखें ना, जब वो रिफॉर्म्स 2002 तक हुई, तो उसके बाद आप देखें कि आप फिगर देखें उसके बाद कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह हो रही थी, यू नो 15-20%, आपकी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ रही थी, कि 2002 से अगले 5 साल में उसकी डबल हो गई, 10 बिलियन से 20 बिलियन हो गई.
हमारे मुल्क में आपने इतनी बड़ी बातें की हैं, ये कहाँ डिस्कस होती हैं?
ये कोई नहीं डिस्कस होती है, बड़ा मुश्किल है
ये. हमारे पास कोई थिंक टैंक है ना, कहीं भी नहीं ये डिस्कस कर सकते हम.
हमने अच्छा कुछ 2013-14 में वर्किंग फॉर डेलॉयट कंसल्टिंग, तो मैं सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा कि यार हमें 2-3 साल का ना एक टैरिफ प्लान बना दें. तो वो बना के दिया, बाय द टाइम उसको बना के दिया, तो सेक्रेटरी के उसी दिन मतलब जैसे बनाया तो वो ट्रांसफर हो गई. खैर उसने साइन करके उसको भेज दिया FBI वगैरह. अगले जो भी लोग आए उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, वी डोंट एग्री विद दिस. वो बस उसको शेल्व कर दिया, इट लाइंग देयर वेयर एवर इट इज, कुछ भी नहीं उस पर एक्शन हुआ. इसी तरह ये पहले एक वर्ल्ड बैंक से मुझे याद नहीं ऑस्ट्रेलियन क्या नाम सुनता है, He came, he made a very good, ये सारा कुछ, ये कितने स्लैब्स होने चाहिए, क्या क्या नाम है वो बैंक है अभी एकदम से.
वो मैंने ही बुलाया था, मुझे याद है उसका क्या नाम है, क्या था वो जो मैंने रिपोर्ट करवाई थी प्लानिंग कमीशन में जब मैं था, उससे रिपोर्ट करवाई थी.
हाँ, उसका जो है ना आपका उस पे आपकी वेबसाइट पे उसका लिखा हुआ भी है.
बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा हुआ है वो, पड़ी हुई रिपोर्ट वहीं पड़ी हुई. खैर मैं तो छोड़ के आया था, पता नहीं. हाँ बिल्कुल, वो अच्छी रिपोर्ट थी, उसकी बेसिस पे हमने SROs पे बड़ी तरक्की की. अब जरा SROs की तरफ आ जाए, मुझे बताएं SROs. मंजूर साहब, मैं बच्चा था, मेरा ख्याल में इकोनॉमिक्स अभी सीखनी शुरू की थी, तो SROs पे बात हो रही थी. आज मैं माशाल्लाह अब उम्र नहीं बताना चाहता, काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, बट SROs वहीं चल रहे हैं. अब ये डार साहब कहते हैं हमने SROs ख़त्म कर दिए हैं. मंजूर साहब मैं तो नहीं मानता, आप बताइए क्या हाल है SROs का?
जी इन्होंने ना बस इस तरह उसको किया है कि उसका उसका और सत्यानाश कर दिया. कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये था कि
जरा आगे जाने से पहले जरा SROs क्विकली एक्सप्लेन कर दें क्या होता है, ताकि समझ आ जाए लोग.
दिस मींस स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स. एक तो आपकी ड्यूटीज जो दी हुई हैं टैरिफ में, और उसके बाद कोई स्पेशल कंसेशन किसी को देना थ्रू ए स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर, दोज आर कॉल्ड SROs.
यानी कि हुकूमत एग्जेम्पशन किसी को दे दे, कोई स्पेशल कंसेशन दे दे अपनी मर्जी से, जब मर्जी चाहे
अपनी मर्जी से, और किसी को कम दे, किसी को ज्यादा दे. एंड इट्स नॉट ऑल द टाइम फॉर द रॉन्ग रीजंस, इट कुड बी फॉर द राइट रीजंस आल्सो. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कि हम एग्रीकल्चर को ज्यादा सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को, और उसकी मशीनरी को फ्री कर दे, या कह दी कि हम एजुकेशन को करना चाहते हैं तो हम ये पुरानी चीज इस तरह, वो बहुत सारे उस तरह के भी हैं, कुछ चीजें प्रेशर पे हैं तो कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत भी हैं।
ठीक, अच्छा अब बताइए SROs जो हैं, जो मुझे एक चीज समझ आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 77 में टैक्स की पावर, टैरिफ्स की पावर सब दी हुई है पार्लियामेंट को। बजट में हम एक लॉ पास करते हैं, यानी कि बजट में टैक्स और एक्सपेंडिचर सब कुछ डिटरमिन हो जाता है और वो एक लॉ पास होती है। तो क्या SRO गैर कानूनी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है?
जरूर है, लेकिन वो है इस तरह के, हम कहते हैं जी कि टैक्स पार्लियामेंट लगा सकती है लेकिन वो एग्जेम्पशन की पावर तो है ना इनके पास, और वो ECC के थ्रू हो जाता है। अब उन्होंने ये किया कि हमने कि FPR को पहले कुछ पावर्स होती थी, अब उन एग्जेम्पशन की पावर उनके पास नहीं है, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ द कैबिनेट व्हिच इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वो करती है,
यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास है।
फाइनेंस मिनिस्टर के
पास। अब मुझे ये बात बताइए कि ये तो मैं तो नहीं इससे एग्री करता, बड़ी सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट नहीं की जा सकती, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। टैक्स की जो पावर है उसके अंदर, टैक्स लगाने की पावर, एग्जेम्पशन भी तो एक टैक्स ही है ना, आपने टैक्स की लिमिट उसने सेट की, उसका मतलब आप उसके नीचे जिसको मर्जी दे दें। मेरा तो ख्याल है ये भी चीज़ पार्लियामेंट के पास जानी चाहिए, क्या ये सही बात नहीं है? क्यों एग्जीक्यूटिव को क्यों पावर हो ऐसी?
हाँ, वो इन्होंने, आई मीन द वे दे इंटरप्रेटेड इज डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरप्रिटेशन। वो कहते हैं जी एग्जेम्पशन हम दे सकते हैं, हम ये नहीं दे सकते।
इसको कभी कोर्ट ऑफ लॉ में देखा गया?
मेरा नहीं ख्याल।
अच्छा, तो अब SROs की सिचुएशन क्या, जरा डिस्क्राइब कर दे प्लीज।
SROs, बहुत सारे SROs इस तरह थे जिस तरह के एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड को एक्सपोर्ट हमने करना है, या सर्विसेज इंडस्ट्रीज को, या फॉर एग्जांपल इंटरनेट को कंट्री में ज्यादा प्रमोट करना है, तो उन्होंने बजाय टैरिफ में देने के उन्होंने ये किया कि जो SROs तो पावरफुल लॉबीज की, पावरफुल लॉबीज लाइक एटमा, लाइक ऑटो इंडस्ट्री, इनको तो नहीं छेड़ा। फार्मर्स के लिए थे या कोई एनवायरमेंट के लिए थे या कोई इस तरह थे, वो सारों को हटा दिया। इसका मतलब है कि पहले आप जिस तरह देखेंगे, ये इन्होंने 3G 4G ऑप्शन की, और उसके बाद ये था कि IT इंडस्ट्री ने अपने अपनी राय कि कितनी मशीनरी मंगाएंगे। अब इन्होंने एकदम से ड्यूटियों ने कह दी, SRO में था पहले उसमें 5% थी, वो तो SRO खत्म हो गया, अब इसकी ड्यूटी होगी 300-400 गुना बढ़ा दी, 20-25%। अब वो लोगों ने मतलब सारा कंट्री में उसका ये एकदम से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ जाती, लेकिन उन लोगों ने अपनी मशीनरी कम कर दी। इस तरह आप देखें कि ये हमने एफ्लुएंट प्लांट्स होते हैं ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कुछ भी इसमें से जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको प्रोसेस करने के लिए पहले कि कभी कभार कोई एक डोनर बाहर से भेज देता था कि ये आपके एनवायरनमेंट के लिए, वो हमने हटा के हमने उस पर ड्यूटी लगा दी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने अनफॉर्चुनेटली इस SRO एक्सरसाइज को बहुत गलत यूज किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो हमने कर दिया।
अच्छा, तो यानी कि SRO की सिचुएशन, हम ना माने हुकूमत की बात, SRO की सिचुएशन वहीं की वहीं है। नंबर एक, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब चाहें ECC के थ्रू SRO लगा सकते हैं, पार्लियामेंट को बाईपास कर सकते हैं। नंबर दो, जो मेजर SROs हैं ऑटोमोबाइल वगैरह के, वो मौजूद हैं। नंबर तीन,
नॉट ओनली मौजूद है सर, ये अभी जो नई ऑटो पॉलिसी में आएगा उन्होंने कहा जो नया वो आएगा इन्वेस्टर, तो उसके लिए हम उसको मशीनरी भी फ्री देंगे, उसके पार्ट्स भी उसको कहे, तो एक किस्म का बढ़ा दिए,
एक और बढ़ा दिया, ठीक है। और नंबर तीन ये है कि SROs की जो इस्तेमाल है वो इस तरह हुआ है कि कॉस्मेटिक चेंज आ जाए, बट उसके जो रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि आपने कहा इंटरनेट में की प्रोग्रेस में तखीर होगी वगैरह वगैरह, एफ्लुएंट्स वगैरह नहीं आ रहे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे गौर ही नहीं किया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रिसर्च तो कोई होती नहीं। अच्छा, इसके बाद चलें SROs की सिचुएशन क्लियर होगी, मुझे ज़रा FTAs की सिचुएशन क्लियर कर दें। हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट धड़ाधड़ साइन कर रहे हैं, कितनी हो गई हैं? मेरा ख्याल 50 हो गई हैं, 100 हो गई हैं, कितनी हो गई हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है।
क्या, कितनी हो गई?
जिस तरह एक तो दुनिया में FTAs होते हैं ना कि सब्सटेंशियल ट्रेड कवर होता है, पाकिस्तान का उस तरह नहीं है। पाकिस्तान के बस वो ज्यादातर एक दो FTA जो कि सिग्निफिकेंट हैं, फॉर एग्जांपल एक चाइना के साथ है, एक मलेशिया के साथ है और श्रीलंका के साथ है।
हाँ।
बाकी FTA हमारे वैसे ही हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के साथ कि आप हमारे सिट्रस फ्रूट ले लें ड्यूटी कम कर दें और हम आपका पाम ऑयल ले लेंगे ड्यूटी कम कर देंगे। इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने ये, दीज आर नॉट कॉल्ड FTAs, ये WTO की डेफिनेशन में FTAs है ही नहीं। तो हमने FTAs ये दो तीन ही किए हैं, लेकिन उसमें उसमें हमने वी वेंट कम्प्लीटली द रॉन्ग वे। सबसे पहले तो ये है कि चाइना इज अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव इकोनॉमी, अक्सर कंट्रीज उसके साथ उनके अगर जिस तरह डेवलप कंट्रीज के जीरो टैरिफ, उनका एवरेज टैरिफ 1-2% होता है, वो भी वो चाइना से FTA करने में घबराते थे, अब आके उन्होंने करना शुरू किया। पाकिस्तान पिक्स अप द फर्स्ट कंट्री इज चाइना, चाइना के अपने टैरिफ्स रिफॉर्म करके बिकॉज ऑफ देयर एक्सेशन टू WTO एंड वो खुद भी उन्होंने अपनी डोमेस्टिक रिफॉर्म, उन्होंने मैक्सिमम टैरिफ को 8% पे लिया है। अब हमारा टैरिफ जो है ना ऑटोज पे 60 जो भी है, चलो ऑटोज तो कवर नहीं होते उस FTA में, तो हमारे टैरिफ जो से लेट्स से कि हमारा टैरिफ था 25% और चाइना का था 8%। चाइना ने जो हमें कंसेशन दी कि हमें आप कीजिए पाकिस्तान को, हमने 50% कंसेशन दे दिए तो 4% कर दिया, हमने अगर 25 से 50% किया तो हमने 12 कर दिया। You see the big margin we have given.
बिल्कुल।
इसके बाद क्या हुआ कि हमने regulatory duty बढ़ा दी, तो एक किस्म का चाइनीज के लिए मार्जिन और बढ़ा दिया।
और बढ़ा दिया बिल्कुल।
अदर हैंड चाइना ने जो कंसेशन हमें दी थी वही उन्होंने आसियान को दे दी, वही सबको दे दी, पाकिस्तान का मार्जिन जीरो हो गया और चाइना के। इसी तरह हमने मलेशिया के साथ सेकंड कर दिया, मलेशिया इज मोर और लेस उनके भी टैरिफ बड़े लो हैं लाइक डेवलप कंट्रीज बिकॉज दे आर अ ट्रेडिंग नेशन, यू नो 100+ billion की उनकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, तो इसलिए उनको भी टैरिफ बहुत कम थे, हमने उनके साथ किया तो हमें उनसे भी कोई कंसेशन नहीं मिली। ऑन द अदर हैंड बिकॉज वी मेंटेन वेरी हाई टैरिफ, तो इसका मतलब कि वी आर गिविंग देम एक किस्म की कंसेशन फ्रॉम आवर ड्यूटीज, यू नो उनको एक किस्म का हम सब्सिडाइज कर रहे हैं उनके इम्पोर्ट।
माशाल्लाह।
दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि कुछ चीज अगर आपको फॉर एग्जांपल एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी आ रही है कहीं से, मुझे आई मेट समवन इन कराची, वो कहता है पति स्वीडन से, उसको कुछ मिल रही थी, लेकिन वो कहता है कि बिकॉज उस पर ड्यूटी ज्यादा है चाइना से कम है एंड ही वाज गोइंग फॉर द चाइनीज, हालांकि उसका कह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है 1 करोड़ रुपए ज्यादा आएगा चाइनीज का, लेकिन ही वुड रादर गो फॉर दैट क्योंकि ड्यूटी कंसेशन है। तो ये जो कंट्रीज भी इस तरह के ये एफटीएस करते हैं वो अपनी डोमेस्टिक रिफॉर्म पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने कोई डोमेस्टिक रिफॉर्म नहीं की ना साइन करने के बाद, अब हमने चाइना के साथ किया तो सही 2007 में और हमने कहा कि हम 2012 में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब जब सेकंड पार्ट करने का टाइम आया और वो आते हैं इधर या हम जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि जी पहले तो पिछले को रीनेगोशिएट करें फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह नहीं होता, यू नो यू गेट दिस टाइम एंड यू रिफॉर्म योर ओन पॉलिसीज, और हमने कोई रिफॉर्म नहीं किया था इससे फ्रॉम 2002 हमने आज तक कोई रिफॉर्म की कोई रिफॉर्म।
पर मंजूर साहब, हमारी चीन के साथ दोस्ती को हिमालिया से ऊंची है और समुद्र की गहराई से गहरी है, तो हमें चीन के साथ तो ये करना ही था ना। पर चले खैर ये छोड़े, मुझे ये बात बताइए,
देखना चीन के साथ ठीक है करें, लेकिन अब देखिए हमारा टोटल जो है चाइना के साथ कोई 12-13 बिलियन का ट्रेड है, इंडिया की इतनी दोस्ती गहरी नहीं होगी, हिमालय से ऊंची नहीं होगी, उनका कुछ 70 बिलियन का है और अब दे आर टेकिंग इट 200 बिलियन इन ईयर्स टाइम, तो वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये
पर आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है, लेट मी समराइज वेरी क्लियरली वेरी क्विकली एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक रिफॉर्म पहले होना चाहिए, और मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूं कि हमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी मेकिंग हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, कोई रिसर्च, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई थिंकिंग, जो आप बातें कह रहे हैं बड़ी पेचीदा बात है मंजूर साहब, ये आम आदमी को नहीं समझ आती, ये पेचीदा इन्वेस्टिगेशंस कहाँ हो रही हैं, कहाँ डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडिया में ऐसा ही हाल है, वहाँ ट्रेड पॉलिसी पे रिसर्च होती है, वहाँ ऐसी चीज़ें चलती हैं, उनके इदारे नेशनल टैरिफ कमीशन वगैरह ये चीज़ें चल रहे हैं अच्छी तरह, उनके यहाँ रिसर्च होती है इन चीज़ों में कि नहीं, या हमारी तरह ही है वो भी?
इंडिया वॉज मच वर्स देन अस टिल 90s
जी,
फिर वो उनको एक कंसिस्टेंसी मिल गई बेसिकली लीडरशिप मनमोहन सिंह की, पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर देन ही कंटिन्यूड ऑन एज प्राइम मिनिस्टर, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे उनका जोर रहा, तो उन्होंने रिफॉर्म शुरू की। ये जो आप बता रहे थे ना कि हमने वो 2002 में 25% रेट पे आए हाईएस्ट पे, इंडिया वो एट दैट टाइम वो पहुंचा था 30% पे. उन्होंने दे कंटिन्यूड दैट रिफॉर्म. उन्होंने अब करते करते उनका हाईएस्ट रेट हो गया है 8.5%.
8.5% इंडिया में?
जी 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 जी. और हम जो है हमने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के वो 25 से 30, 35, 40 ले गए हम. तो इंडिया हैज बिकम मच मोर इंटीग्रेटेड इन द लास्ट 10 years. और उसके बाद वंस दे डिड दिस रिफॉर्म्स दे स्टार्टेड टेकिंग ऑफ. अब 2002 में और अब उनमें बड़ा फर्क है. अब देखें ना, फॉर एग्जांपल हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं. इंडियन ऑटो इंडस्ट्री कैन इंपोर्ट एनी पार्ट फ्रॉम थाईलैंड, कोरिया, फ्रॉम एनीवेयर.
अच्छा, उन्होंने इंडिजनाइजेशन छोड़ दी
एट जीरो ड्यूटी.
अच्छा,
उनकी कारें अच्छी होंगी कि हमारी कारें अच्छी होंगी? तो ये इन जनरल इंडिया हैज गॉन इनटू अनदर लीग इन द लास्ट 10 years.
कंपेयर टू अस. अच्छा, पर इंडिया में क्या रिसर्च होती है टैरिफ प्रोटेक्शन इन चीजों पे वगैरह कि नहीं?
उनका रिसर्च बड़ी स्ट्रांग है जी. उनका द थिंक टैंक, पता नहीं आप भी उधर उसके गए होंगे. आई वेंट इंडियन आई
क्रियर
उनके 19 PhDs बैठे हैं. आप देखें तो हर दूसरे तीसरे महीने बड़ी अच्छी सॉलिड हर चीज पे रिसर्च पे वो पब्लिश करते हैं. इस तरह कट से इस तरह उनके उनके सिविल सोसाइटी के बहुत स्ट्रांग है, उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनके एकेडेमिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है.
अच्छा, वेरी गुड. तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह. ट्रेड विद इंडिया पे बात करनी है, उस पे करेंगे. अभी नहीं मैं करना चाहता. मुझे एक छोटी सी और बात बताइए कि मैंने देखा था जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था कि एक बड़ी मजार बात थी. आपको आपको पता होगा, कई दफ़ा बात हुई है इस पर. मुझे बड़ा ये मेरा इंटरेस्ट है कि सिटीज़, अंजुम का भी इंटरेस्ट है कि सिटीज़ डेवलप हों और सिटीज़ में हाई राइजेज़ हों, ये वो. तो मैंने एक दफ़ा बात की, मैंने कहा जी टावर क्रेन्स पाकिस्तान में नज़र नहीं आते. तो मुझे पता चला कि टावर क्रेन्स पे हमने रूल लगाया हुआ है, 2-3 रूल लगाए हुए हैं. एक तो ये कि टावर क्रेन वही बंदा इम्पोर्ट कर सकता है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो. नंबर 2, अगर टावर क्रेन इम्पोर्ट कर लिया तो आपने ड्यूटी देनी, आप वापस नहीं ले जा सकते बाहर. ठीक है. नंबर 3 एक और भी था कि टावर क्रेन आप नया टावर क्रेन इंपोर्ट करें, सेकंड हैंड नहीं कर सकते क्योंकि शायद हम बना लें कभी. तो सेकंड हैंड अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप बैगेज स्कीम में करेंगे. ठीक है. तो क्या आज भी यही सिचुएशन है?
ये मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन मोर और लेस इसी तरह की पोजीशन चल रही थी काफी अर्से.
क्योंकि दुनिया में तो टावर क्रेन जो है वो रेंट होते हैं और वो फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं.
दूसरे मुल्क में आते हैं,
ठीक है ना. वो तो कहीं बैठते ही नहीं. तो अगर आपने ड्यूटी ले ली तो वो तो मर गया बंदा, वो तो चला ही नहीं सकता.
चला ही नहीं सकता. हमारी एक स्कीम जरूर है कि अगर कोई चीज इंपोर्ट करें तो डिपेंडिंग ऑन द कितना टाइम आपने यूज किया उसके हिसाब से ड्यूटी दें. 2 महीने रही है, 3 महीने रही है, लेकिन इन जनरल इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड.
अच्छा, तो मेरा मतलब बिजनेस तो फिर इसका कॉस्ट तो बढ़ गया ना, बिजनेस का, कंस्ट्रक्शन का. इसी तरह जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे घरों में मैं देखता हूँ कि इंसुलेशन लगती ही नहीं. हम एनर्जी शॉर्ट है. हमारी एनर्जी माशाल्लाह महंगी होती जा रही है भी नहीं हमारे पास. पर मैं देखता हूँ हर घर में इंसुलेशन होती नहीं और एयर कंडीशनर दबा के चल रहा होता है. मेरा जो अमरीका में घर है, आपका भी माशाल्लाह घर बार है, आपको पता है कि हम कितनी इंसुलेशन के साथ कितनी बिजली बचाते.
जी.
तो मुझे ये भी पता चला है कि हमारी इंसुलेशन की टैरिफ रिजीम ऐसी है कि वो वारा नहीं खाता कि हम इंसुलेशन लगाए.
बिल्कुल ठीक है. ये चीज़ें हैं हमारी, ये यू नो दे आर. आप कोई भी चीज़ इस तरह कंपेयर कर लें, दे वेरी एक्सपेंसिव.
तो फिर मंजूर साहब, इसके कितने रियल कॉन्सिक्वेंसेज हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी को ये अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें. बहुत डीप चीज़ें हैं ये, और इसका मेरा ख्याल है कोई भी देखभाल नहीं कर रहा.
हाँ जी, कोई भी रियलिटी यही है, कोई भी देखभाल नहीं कर रहा.
क्यों अंजम, आप माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़ाते रहे हैं ये वो वगैरह, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह क्यों नहीं देख रही भाई?
नदीम, नहीं देख रही. ये तो एक फैक्ट है. क्यों नहीं देख रही, ये भी मेरा ख्याल है इस पे भी हमें एक प्रोग्राम करना पड़ेगा.
अंजम, आप छुप नहीं सकते. ये हर प्रोग्राम में यही होता है कि आप इकोनॉमिस्ट माशाल्लाह मायूस बैठे हुए. ठीक है कि हम बात करते हैं कि यार ये इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है. आप इकोनॉमिस्ट वही टैक्स GDP रेशियो और फिस्कल डेफिसिट की बातें करते रहते हैं. ओ खुदारा, ये देखें यहाँ तो बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा.
हाँ नहीं, नुकसान तो हो रहा है.
ये आपने देख सुन लिया कितना नुकसान हो रहा है. अगर इसको मैं बैठ के क्वांटिफाई करूं, मेरा ख्याल ये तो कोई 15-20% GDP बन जाता है नुकसान.
तो ये अदीम साहब, बात यह है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इंटरनेशनल ट्रेड पे पाकिस्तान में काम नहीं, बाकी कंट्रीज में फुल फ्लैज. अभी वियतनाम ने फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी एक बनाई है इंटरनेशनल ट्रेड पे. बाकी सब कंट्रीज में एवरी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड. मैं तो पिछले कितने 3-4 साल से वापस आया हूँ. आई बिन ट्राइंग, आई बिन राइटिंग टू ऑल दीज यूनिवर्सिटीज के मुझे भी बुला लें, कभी मैं लेक्चर देना चाहता हूँ ये इस पे, लेकिन कभी नहीं उनका वो है नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं.
नहीं, वो मैं भी कोशिश कर चुका हूँ. हमारी यूनिवर्सिटीज कहती हैं लेक्चर कोई ना आके दे. हम बिल्कुल खुश हैं, हम अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में माशाल्लाह बड़े अच्छे महलों में रह रहे हैं, हमें आप आगे तंग ना करें.
नदीम, ये एक बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि जो डिमांड है रिसर्च का वो है या नहीं है. मैंने एक ज़माने में इस पे काम किया था, कॉस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ अनरिलायबल वाटर सप्लाईज, ठीक है. और इसी तरह मैंने ये देखा है कि अनरिलायबल पावर सप्लाई जो है उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है. वो काम हो चुका है, मगर जैसे मंजूर साहब ने भी कहा, तुमने भी कहा कि आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पैसे दे के बहुत ग्लोबल एक्सपर्ट से रिपोर्ट तैयार करवाई हैं जो कि वहाँ शेल्फ पे पड़ी हुई हैं. तो अगर उनका कोई डिमांड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट्स निकलती हैं उनका तो बिल्कुल ही नहीं है.
नहीं अंजुम, अंजुम मैं आपसे अग्री नहीं करता. देखिए डिमांड तो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं. अब मतलब जो रिपोर्ट की बात हो रही है ये तो पढ़ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को चाहिए था ना, यूनिवर्सिटी फैकल्टी को चाहिए था ना. अगर यूनिवर्सिटी फैकल्टी इंटरेस्टेड नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो खुदारा उस मुल्क का क्या बनेगा. आपको याद है जब हम बाहर पढ़ते थे ये रिपोर्टिंग ये चीज़ें कौन पढ़ता था, हम लोग पढ़ते थे ना स्टूडेंट्स. मुझे अभी तक याद है जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था तो जो लंदन का जो उस वक्त टर्मिनल 4 बन रहा था उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट की रिपोर्ट थी हमने सारी क्लास में पढ़ी उसके बनने से पहले. हमें सारा पढ़ाया गया, वो जो थर्ड लंदन एयरपोर्ट का भी जो उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था हमने क्लास में पढ़ी. मतलब ये तो दुनिया में होता है. आप जो वहाँ चले जाएं अमेरिका में, हेल्थ केयर जो उनसा है, हेल्थ केयर रिफॉर्म पे बड़ी क्लासें होती हैं, बड़ी डिबेट.
वो ऐसा है कि वो वहाँ पे लाइव इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ एकेडमिक इश्यूज़ नहीं है.
हाँ.
मतलब खाली पढ़ना और पढ़ के बस उस पे इम्तिहान दे देना.
हमारे यहाँ भी तो ये लाइव इशू है ना मेरे भाई.
नहीं, लाइव इशू है.
हमारी पतलून उतारी गई है ट्रेड पॉलिसी में,
लाइव
इशू है. निजाम में हमारी पतलून उतारी गई है और आप लोग कहते इशू नहीं है.
नहीं नहीं, वो इशू उस लिहाज से है, मगर उस एकेडमिक के लिए कि वो किस फोरम में जाके प्रेजेंट करेगा, उसकी कौन सुनेगा, मतलब वो चीज सब चीज वो उस सेंस में लाइव नहीं है. वो सिर्फ इसलिए है कि भाई हम एक पब्लिकेशन कर लेंगे, वो जर्नल में छप जाएगी, हम प्रमोट हो जाएंगे. सी, तो इट देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन दैट सेंस.
क्यों जी मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे?
नहीं, आई एग्री विद हिम, देयर इज अ डिस्कनेक्ट. एक तो ये अपने दे डोंट ट्रस्ट, वो कहते हैं एकेडमिशियंस, इनका तो तलक नहीं है, दे डोंट नो, और देयर इज अ सीरियस डिस्कनेक्ट. ये बिल्कुल सही, आई एग्री विद दैट.
नहीं जी, आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, पर मौलवी का डिस्कनेक्ट तो कोई नहीं है. मौलवी तो यूनिवर्सिटीज में हावी है, उसका मैसेज तो बड़ा क्लियर है. डिस्कनेक्ट तो हमारा ही है, बिकॉज हमारे पास मैसेज ही कोई नहीं है.
ठीक
है ना. देखिए मंजूर साहब, इसीलिए सोच विचार शुरू किया है कि ये इश्यूज बाहर आए और ये लोगों को पता चलें. और उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स और हमारे असातिज़ा और हमारे दीगर लोग, जर्नलिस्ट जो इंटरेस्टेड हैं पॉलिसी में, जो इंटरेस्टेड है इस मुल्क की खुशहाली में, वो ये प्रोग्राम सुनेंगे. और आपने हमारा बड़ा हमें ये आज कुछ सिखाया है. आपके ये पॉडकास्ट जो है, आई थिंक अगर कोई अक्लमंद स्टूडेंट्स हों तो इसमें से बहुत डिसर्टेशंस, बहुत रिसर्च आइडियाज निकल सकते हैं. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.
जस्ट बिकॉज डिस्कशन बहुत फैल गई थी, तो मैं एक दो तीन चार पॉइंट
प्लीज समराइज करें, प्लीज समराइज करें.
कि हमारा ट्रेड पॉलिसी का प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड पे दुनिया में हाईएस्ट टैक्सेस हैं. वी कलेक्ट 40, आप एफबीआर की बुक देख रहे हैं, 40% टैक्स इंटरनेशनल ट्रेड से आते हैं. तो हमें चाहिए कि हम बेंचमार्क करें अपने ये पॉलिसीज कंपेयर टू नॉट विद डेवलप्ड कंट्रीज, विद जस्ट अदर कंट्रीज इन द रीजन, इंडिया के साथ, थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ, जिधर भी जो कंट्रीज है, कोई 5-6 कंट्री हम यूज करके इसको करें. दूसरी बात यह है कि ये ट्रेड अक्सर वो मेरा ख्याल किसी और फोरम पे बात करेंगे रीजनल ट्रेड की, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया में लोएस्ट ट्रेड है इन द रीजन, less than 5%. अफ्रीका में भी 18% है, यूरोप में 66%, बाकी दुनिया में देखें 60-70% है. लेकिन हम किसी को ना ट्रेड करने देते हैं, ना खुद ट्रेड करते हैं किसी और के साथ, ना उधर, हर तरफ हमने बंद किया हुआ. तो और उसके बाद अगली बात यह है कि ये इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज है. अभी आई है ये पॉलिसी, तो हम यही कह रहे हैं कार इंडस्ट्री को कि भैया आप सारे पार्ट्स लोकली बनाएं, बाहर से नहीं आने चाहिए ये वो. तो ये तीन चार चीज़ें हमें मोटी मोटी चीज़ें हैं कि हम बेंच मार्क करनी चाहिए, लेट ट्रेड टेक प्लेस और रीजन में ट्रेड बढ़ाना चाहिए।
बहुत अच्छी समरी दीजिए आपने मंजूर साहब। इसके साथ मैं ऐड कर दूं कि हमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप मुझे बताएं आप अग्री करते कि नहीं करते, कि हमें खुदारा रिसर्च इन्वेस्टिगेशन थिंकिंग के दायरे बनाने चाहिए हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी, बजाय सिर्फ डीएमजी राज के, हमें थिंकिंग और रिसर्च के दायरे होने चाहिए। मंजू साहब आप मेरे से अग्री करेंगे कि अंजुम भी जानते हैं कि जी अमेरिका में कोई मिनिस्ट्री कोई इदारा नहीं जिसका रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है।
नहीं नहीं, दैट इज 100% एंड द अदर थिंग इज कि आप टैक्स कलेक्टर्स को ट्रेड पॉलिसी के चलते बना सकते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है कि किस तरह टैक्स,
बिल्कुल सही,
और वो ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग इन दिस कंट्री, दैट्स ओनली हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान।
वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, ऑल द बेस्ट जी, खुदा हाफिज।
हाफिज।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।